नमस्कार, आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है दोस्तों आपका। मैं मुनीश शर्मा हूं
और साथ में मैं हूं विनीता ठाकुर।
और दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं 16 से 31 अगस्त का अंक। दोस्तों, खेल आज भारत के सर्वांगीण विकास का मुख्य माध्यम बन गए हैं। जब कोई देश खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ता है तो देश की साख भी बढ़ती है, इसलिए आज खेल को भारत के विकास से जोड़ा जा रहा है। केंद्र सरकार ने बीते 11 वर्ष में परिवर्तनकारी पहल और नीतियों से खेल कूद का आधार स्तंभ खड़ा करते हुए इसे भारत के युवाओं के आत्मविश्वास से जोड़ दिया है। जिस देश की 65% आबादी 35 साल से कम उम्र के युवाओं की हो, उसे वैश्विक महाशक्ति बनने से भला कौन रोक सकता है। और इसी सोच को साकार करने के लिए हाल ही में आई राष्ट्रीय खेल नीति 2025 यानी खेलो भारत नीति 2025 सिर्फ एक नीति नहीं है बल्कि महत्वाकांक्षी भारत का दर्शन बन गई है। गत 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के संदर्भ में पत्रिका का ये अंक खेलो भारत नीति 2025 देश में खेल परिदृश्य के इसी बदलाव और विगत 11 वर्षों की इस यात्रा को अपने पाठकों के समक्ष लेकर आई है। खेल को लेकर आज भारत का आत्मविश्वास बढ़ा है, इसीलिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं,
साथियों, ये स्पोर्टिंग कल्चर और स्पोर्टिंग सोसाइटी के रूप में भारत की प्रगति दिनों दिन हम सब देख रहे हैं। एक और कारण है जिसके चलते भारत में आगे बढ़ने का आत्मविश्वास आया है। अब हम 2030 यूथ ओलंपिक और 2036 ओलंपिक गेम का आयोजन करने का प्रयास कर रहे हैं।
श्रोताओं, इसके अलावा व्यक्तित्व की कड़ी में पिछड़े वर्ग को न्याय दिलाने वाले बीपी मंडल, फ्लैगशिप में जनधन योजना के 11 वर्ष, राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 का अनावरण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा सहित उनके पखवाड़े भर के कार्यक्रमों को इसमें शामिल किया गया है। साथ ही पत्रिका के इनसाइट पेज पर मन की बात और बैक कवर पर यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थलों के रूप में मान्यता दिए गए मराठा सैन्य विरासत के 12 किलों को समाहित किया गया है। किसी देश की विकास यात्रा सिर्फ कुछ पहलुओं पर निर्भर नहीं करती बल्कि इसकी नींव में देश के हर कण, हर नागरिक, हर हिस्से की बराबर भागीदारी की जरूरत होती है। बीते एक दशक में परिवर्तनकारी बदलावों के साथ भारत जब विकसित राष्ट्र के संकल्प पथ पर आगे बढ़ रहा है तो इस विकास यात्रा में सभी की सम्मिलित भागीदारी की जरूरत है। पश्चिम बंगाल भी इस कड़ी में अहम साझेदार है।
विकसित भारत के लिए विकसित पश्चिम बंगाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इसी विजन की वानगी दिखाई दी दुर्गापुर में, जहाँ 5,400 करोड़ रूपए की विकास परियोजनाओं के साथ उन्होंने राज्य के विकास को और तेज रफ्तार दी। भारत ने एक दशक की परिवर्तनकारी यात्रा के साथ विकास को एक नई गति दी है। कनेक्टिविटी हो या इंफ्रास्ट्रक्चर, शहरों के साथ अब गांव और सुदूर अंचल तक केंद्र सरकार की प्राथमिकता है। सुनियोजित विकास की इस यात्रा में देश का हर राज्य बराबर भागीदार बना है। ये परियोजनाएं मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के दृष्टिकोण के साथ पश्चिम बंगाल को आगे बढ़ाने में और सहायता करेंगी। इस अवसर पर बंगाल में पीएम मोदी द्वारा दी गई योजनाओं की जानकारी पत्रिका में शामिल है, तो आइए सुनते हैं पश्चिम बंगाल के विकास पर आखिर क्या कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
साथियों, भारत सरकार पश्चिम बंगाल के विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। आज पश्चिम बंगाल देश के उन राज्यों में शामिल हो चुका है जहां रेलवे का 100% बिजलीकरण हो चुका है। लंबे समय से पुरुलिया से हावड़ा के बीच मेमू ट्रेन की मांग कर रहे थे, भारत सरकार ने जनता की यह मांग भी पूरी कर दी है। आज पश्चिम बंगाल के अलग अलग रूट पर 9 वंदे भारत ट्रेनों का संचालन हो रहा है। इसके अलावा आप सबके लिए 2 अमृत भारत ट्रेन भी चल रही है। साथियों, बीते 11 साल में यहां भारत सरकार द्वारा अनेक बड़े हाईवे प्रोजेक्ट पूरे किए गए हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट पर काम जारी है। जब 6 लेन का कोना एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो जाएगा तो इससे पोर्ट की कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी। ये कनेक्टिविटी कोलकाता और पश्चिम बंगाल के बेहतर भविष्य की नींव को मजबूत करेगी।
सहकारिता के माध्यम से जब हम अनेक लोगों को जोड़कर एक प्रबल शक्ति का निर्माण होते हुए देखते हैं, तब पता चलता है कि राष्ट्र निर्माण में छोटे से छोटा व्यक्ति कितना बड़ा योगदान दे सकता है। भारत में करीब 8.25 लाख सहकारी समितियों से जुड़े 30 करोड़ लोगों का आंकड़ा इसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए काफी है। ये समितियां समावेशी विकास के शक्तिशाली इंजन के रूप में उभर रही हैं। सहकार से समृद्धि की इसी मूल परिकल्पना को मजबूती से आगे बढ़ाने की दिशा में केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 का अनावरण किया। भारत में सहकारिता की क्षमता और इसके विस्तार को ध्यान में रखकर सहकार से समृद्धि विजन के अनुरूप आजादी के 75 वर्ष बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 जुलाई 2021 को सहकारिता मंत्रालय का गठन किया। आज देश की छोटी से छोटी सहकारी इकाई का सदस्य भी गर्व और आत्मविश्वास से भरा है। सहकारिता में कंप्यूटरीकरण, नए पैक्स, कॉमन सर्विस सेंटर की सुविधा के साथ जुड़ना और विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना को लेकर भारत में सहकारिता की चर्चा है।
केंद्र सरकार द्वारा पायलट परियोजना के तहत 11 राज्यों में 11 पैक्स गोदाम का निर्माण किया जा चुका है, जबकि 500 से ज्यादा गोदामों का निर्माण भी दिसंबर 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा। वर्ष 2020 से पहले कुछ लोगों ने सहकारिता को मृत प्राय क्षेत्र घोषित कर दिया था, लेकिन आज वही लोग कहते हैं कि सहकारिता क्षेत्र एक सुनहरा भविष्य लिए है। बीते 4 साल में सहकारिता क्षेत्र हर पैमाने पर कॉरपोरेट क्षेत्र की तरह समानता के आधार पर खड़ा है। सहकारिता की इन्हीं क्षमताओं को मजबूती देने के लिए नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 जारी की गई है। राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 का अनावरण करते हुए केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बने ये बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ लोगों को साथ रखकर देश के अर्थतंत्र का विकास करने की क्षमता सिर्फ सहकारिता क्षेत्र में है। छोटी छोटी पूंजी वाले अनेक लोगों को जोड़कर बड़ी पूंजी की व्यवस्था कर उद्यम स्थापित करने की क्षमता भी सिर्फ सहकारिता के क्षेत्र में है। सहकारी नीति बनाते समय ये ध्यान रखा गया कि इस नीति का केंद्र बिंदु 140 करोड़ लोग हों, गांव, कृषि, ग्रामीण महिलाएं, दलित और आदिवासी हों। नई सहकारिता नीति से बड़े पैमाने पर रोजगार और आजीविका के अवसर पैदा होंगे और इस नीति का विजन सहकारिता के माध्यम से समृद्धि लाकर 2047 तक विकसित भारत का निर्माण करना है। राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 पर आधारित एक रिपोर्ट पत्रिका में शामिल है।
मजबूत और निर्णायक नेतृत्व क्षमता, तेजी से बढ़ते मध्यम वर्ग और लोगों की बढ़ती आय के साथ भारत वैश्विक साझेदार के रूप में दुनिया का सबसे पसंदीदा देश बनकर उभरा है। खास तौर पर ऐसे समय में जब दुनिया के कई देश भारी उथल पुथल और टैरिफ वॉर से जूझ रहे हैं, भारत ने ब्रिटेन के साथ बहुप्रतीक्षित व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता, डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन और आपसी साझेदारी के 10 साल के विजन के साथ ऐतिहासिक संबंधों की नई नींव रखी। जब दो लोकतंत्र और दुनिया के दो प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच समझौते होते हैं तो ये वैश्विक स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देते हैं। विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत जहां सबसे तेज आर्थिक रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है, तो वहीं मेक इन इंडिया के साथ दुनिया के मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में खुद को विकसित करना चाहता है। अपने इसी लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिवसीय ब्रिटेन दौर के पहले दिन दोनों देश के व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौते CETA पर हस्ताक्षर किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस समझौते को लेकर कहा कि ये समझौता 2 लोकतांत्रिक देशों और विश्व की 2 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच नए विश्वास का प्रतीक है।
दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर के साथ बातचीत में कहा कि समझौते से हमारे किसान, एमएसएमई और युवाओं के लिए नए अवसर पैदा होंगे, तो टेक्नोलॉजी, डिफेंस, क्लाइमेट, एजुकेशन और पीपल टू पीपल कनेक्ट के क्षेत्रों में एक मजबूत, भरोसेमंद और महत्वाकांक्षी साझेदारी का रोड मैप बनेगा। पीएम मोदी ने सेंड्रिगम हाउस में किंग चार्ल्स तृतीय से भी मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने एक पेड़ माँ के नाम पहल के तहत एक खास पौधा गिफ्ट किया। ये पौधा इस बार सर्दी के मौसम में लगाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूके के पीएम कीर स्टार्मर ने द्विपक्षीय बैठक में दोनों देशों के बीच आपसी साझेदारी के 10 साल के रोडमैप के तौर पर भारत ब्रिटेन विजन 2035 पर भी सहमति जताई। ये ब्लूप्रिंट व्यापार, प्रौद्योगिकी, रक्षा, शिक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु कार्रवाई जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को गहरा और विविध बनाने के लिए एक परिवर्तनकारी एजेंडा निर्धारित करता है। ये दीर्घकालिक रणनीतिक दृष्टिकोण व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित है और उभरती वैश्विक चुनौतियों के बीच एक सुरक्षित, टिकाऊ और समृद्ध विश्व को बढ़ावा देने के दोनों देशों के साझा संकल्प को दर्शाता है। विजन 2035 के तहत दोनों देश डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, एजुकेशन और डिफेंस के साथ जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में मिलकर काम करेंगे। साथ ही भारत और मालदीव सिर्फ पड़ोसी भर नहीं हैं, बल्कि विकास यात्रा में अनन्य सहयोगी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 दिवसीय मालदीव यात्रा से इन संबंधों को नई ऊर्जा ही नहीं मिली, बल्कि दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों की एक और बुनियाद रखी गई है। पीएम मोदी के ब्रिटेन और मालदीव दौरे की विस्तृत जानकारी पत्रिका में पढ़ी जा सकती है।
किसान केंद्र सरकार की प्राथमिकता है, तो आधुनिक बुनियादी ढांचे की मजबूती सबसे बड़ा लक्ष्य। इसी दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 6 बड़े फैसलों को मंजूरी दी गई। इनके तहत जहां सहकारी समितियों को और मजबूत बनाने के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को करोड़ों रुपए दिए जाएंगे, तो वहीं प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत कृषि से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का फोकस किया जाएगा। इसके साथ ही रेलवे के 4 मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट को मंजूरी से रेल नेटवर्क को नई रफ्तार मिलेगी। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को 4 साल में 2,000 करोड़ रुपए के केंद्रीय अनुदान की मंजूरी दी है।
सहकारी समितियां ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक उत्थान, आधारभूत ढांचे विकसित करने और रोजगार पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। देश में मौजूद 8.25 लाख से अधिक सहकारी समितियों में करीब 30 करोड़ सदस्य हैं, जिनमें 94% संख्या किसानों की है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को सरकार की ओर से जारी अनुदान के तहत 4 साल यानी 2025-26 से 2028-29 तक सालाना 500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे और निगम इस दौरान खुले बाजार से 20,000 करोड़ रुपए भी जुटा सकेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय पत्रिका में पढ़े जा सकते हैं।
भारत में सिनेमाई उत्कृष्टता को बढ़ाने के लिए 1954 में शुरू किए गए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार ने न केवल प्रतिभा को पहचान दी है, बल्कि राष्ट्र की सांस्कृतिक छवि को आकार देने वाली विविध संस्कृतियों और कहानियों को भी आगे बढ़ाया है। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 की घोषणा की गई, जिसमें जहां जवान फिल्म के लिए शाहरुख खान और 12वीं फेल फिल्म के लिए विक्रांत मैसी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया। वहीं मिसेज चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे फिल्म में अभिनय के लिए रानी मुखर्जी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री घोषित की गयी। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की जानकारी पत्रिका में शामिल है।
श्रोताओं, अब हम आज की चर्चा को यहीं देते हैं विराम। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसका पता है newindiasamachar.pib.gov.in, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ सकते हैं और अगर चाहें तो उनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। जी हाँ, डिजिटल और प्रिंट में ये पत्रिका आज देशी नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी खास पहचान रखती है, जिसका एक्स हैंडल है NISPIB India। आप हमें response-nis@pib.gov.in पर ईमेल के जरिए अपने सुझाव भी भेज सकते हैं। आपके सुझावों का हम किया करते हैं हमेशा बड़ी बेताबी से इंतजार। दोस्तों, मैं हूं मुनीश शर्मा
और मैं विनीता, आपसे लेते हैं इजाजत।
नमस्कार।